अरमान ने सुन लिया था। तुरंत दौड़कर अरमान अंदर आया और अंदर आते हुए आस्था को पानी पिलाने लगा। वहीं आस्था खाली नजरों से नानी माँ की ओर देख रही थी। वहीं नानी माँ अब नजरें चुराने लगी थी, क्योंकि नानी आस्था को सच नहीं बताना चाहती थी। लेकिन ये सच जानने के बाद आस्था के माता पिता की जान आस्था की वजह से गई है, ये बात आस्था बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और पानी पीने के बाद नानी माँ को देखते देखते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। अब आस्था को इस तरह देखकर अरमान ने घूरकर नानी माँ को देखा और थोड़ा सा तेज चलता हुआ आस्था के पास आया और उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला, आस्था क्या हुआ, अपनी आंखें खोलो। तभी तुरंत डॉक्टर अंदर आ गए थे और आस्था का चेक करने लगे और बोले, बॉस मैडम स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई हैं, आप फिक्र मत कीजिए, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। अब तो अरमान हैरानी से नानी माँ की ओर देखने लगा, क्योंकि नानी माँ के साथ उसने आस्था को छोड़ा था। तो फिर इस बीच ऐसा क्या हुआ कि आस्था बेहोश हो गई, ये बात अरमान के सर के ऊपर से जा रही थी और वो बार बार नानी माँ की ओर शक भरी नजरों से देख रहा था, मानो कि वो नानी माँ से ही जानना चाहता हो कि आखिरकार ऐसा क्या कह दिया उन्होंने उसकी बीवी को कि आस्था बेहोश हो गई। लेकिन नानी माँ अपनी नजरें चुराते हुए तुरंत अपने कमरे में जाने लगी और उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था, क्योंकि उस वक्त वो किसी को भी फेस नहीं करना चाहती थी। वहीं अरमान का ये सोचकर बुरा हाल था कि आखिरकार उसकी बीवी की जिंदगी में चल क्या रहा है। साथ साथ अरमान को वो बात भी याद आई थी जब वो आस्था के लिए फूल लेकर आया था और आस्था ने सबसे महंगे फूल को पसंद किया था। वो सोचने लगा था कि आखिर क्या कहानी है आस्था की जिंदगी की। नानी माँ तो कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है वो बातें नहीं बताना चाहती, तो फिर कौन आस्था की जिंदगी के बारे में उसे बताएगा। इसलिए फटाफट से अरमान ने देव को फोन करना शुरू कर दिया। देव जो कि अरमान को इन्फॉर्मेशन देने के बाद सीधा कहीं और नहीं बल्कि मलाइका के घर चला गया था। मलाइका जिसे जब ये पता चल चुका था कि आस्था अरमान की पत्नी है, तो ये बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और सीधा बेहोश हो गई थी। वहीं देव ने पहले भी मलाइका को देखा था, लेकिन अब बार बार मलाइका से मिलने पर उसके दिमाग में वो स्केच याद आ गया जो मॉल में जिसने आस्था को जान से मारने की कोशिश की थी। जब वो स्केच बनवाया गया था, अब देव के दिमाग की बत्ती जल उठी थी और उसने जैसे ही मलाइका और उस स्केच को मैच किया, तब उसके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। और ये बात उसने अरमान को भी बता दी थी और अरमान ने जल्दी ही देव को मलाइका के पास भेज दिया था, वो भी सारी सुविधा के साथ, यानी कि उसे अच्छी तरह से सजा देने के लिए भेज दिया था। हालांकि अरमान खुद अपने हाथों से मलाइका को सजा देना चाहता था, लेकिन क्योंकि मलाइका ने अपनी जिंदगी के कितने ही सारे कीमती साल अपनी अरमान की कंपनी को दिए थे, तो बस यही सोचते हुए अरमान ने उसे देव के द्वारा ही सजा दिलाने का फैसला लिया था। अब जैसे ही मलाइका के पास देव पहुंचा और देव ने डोरबेल बजाई और मलाइका ने जल्दी दरवाजा खोला और देव को घूर कर देखने लगी थी और चिढ़कर बोली, यहाँ क्या करने के लिए आए हो तुम, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज अरमान मुझसे दूर हो गया। मैं अरमान का साथ चाहती थी, उसे पाना चाहती थी, लेकिन मैं उसे हासिल नहीं कर पाई और इसके जिम्मेदार तुम भी हो। तुमने कभी मुझे अरमान के आसपास भटकने नहीं दिया। अब जब मलाइका ने अपनी भड़ास देव पर निकाली, तब देव धीरे से मुस्कुराया और ठंडे स्वर में बोला, तुम जानती हो आज मुझसे गलती हो गई थी। देव इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा था कि अगर वो इतनी ज्यादा दारू नहीं पीता तो वीर उसके कैद से कभी भी रिहा नहीं होता, लेकिन अरमान ने उसे एक और मौका दिया था, वरना अरमान गलती करने वालों को अपने आसपास भी भटकने नहीं देता है। लेकिन देव को वो अपने भाइयों जैसा मानता था, तो इसलिए उसने देव को एक और मौका दिया था और मलाइका को सजा देने का सौभाग्य उसने देव को दिया था। अब देव ने वहां आकर सीधा सीधा मलाइका के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसे सीधा बाथरूम में ले जाकर उसने बाथरूम में पानी भरकर उसके मुंह को कितनी ही देर तक बाथरूम में डाल दिया था। और जब उसे लगा कि किसी भी पल मलाइका की जान जा सकती है, तब जाकर उसने उसे बाहर निकाला। ऐसा उसने एक बार नहीं बल्कि पूरे 15 बार किया था। मलाइका को बार बार इस बात का एहसास कराया जा रहा था कि अगर सांसें सही से ना आए तो किस तरह का एहसास होता है, तो इसी तरह से मलाइका को सजा दिया जा रहा था। मलाइका को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया था कि किस बात के लिए उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। देव ने तो पूरे 15 बार उसे मौत का एहसास करवाया था, मौत के बाद उसे जिंदगी दी, एक बार फिर मौत देने की कोशिश की, उसके बाद फिर जिंदगी दी। इस तरह से देव ने पूरे 15 बार मलाइका को दम घुटने का एहसास करवाया था और जब मलाइका पूरी तरह से ढीली पड़ गई, तब उसने जाकर उसे छोड़ा था। वहीं मलाइका टूटी फूटी जुबान से देव से पूछ रही थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम मेरी जान ही लेना चाहते थे तो सीधे सीधे मुझे गोली मार देते, नस काट देते या मुझे जहर दे देते, लेकिन इस तरह से तड़पा तड़पा कर मारने का क्या चक्कर है? हाँ, जवाब दो। तब देव ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया को चेंजिंग रूम में बंद किया था, याद है ना? तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी सजा है और शुक्र मनाओ कि केवल मैंने 15 बार तुम्हें इस तरह से टॉर्चर किया है, वरना बॉस ने तुम्हें सीधा सीधा ऊपर भेजने का फरमान दिया था। अब जैसे ही मलाइका ने ये सुना कि अरमान सिंघानिया जिससे वो शुरू से मोहब्बत करती हुई आई है उसी ने उसे मारने का फरमान दिया था, तो उसके तो पैरों में जान ही नहीं बची थी। वो अपने आप को काफी ज्यादा टूटा हुआ सा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो अरमान सिंघानिया को दिल से चाहती थी, उसे प्यार करती थी,
लेकिन ये सुनकर कि अरमान ही उसकी जान लेना चाहता है, अब तो उसकी हालत काफी खराब हो गई थी और वो एक बार फिर से बेहोश हो चुकी थी। वहीं देव ने जल्दी ही उसे एक अस्पताल में एडमिट कराया और उसके बाद सीधा फार्म हाउस चला गया था। वहीं दूसरी ओर अरमान आस्था का हाथ पकड़े बैठा हुआ था। आस्था को एक घंटे बाद होश आया और होश में आने के बाद उसके कानों में नानी माँ की कही हुई बातें ही गूंज रही थी कि उसके माता पिता की जान उसकी वजह से गई है, तो ये बात आस्था बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो नानी माँ से पूरा सच जानना चाहती थी। तभी अरमान ने आस्था के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखते हुए कहा, तुम इस तरह से परेशान क्यों हो रही हो? कहीं तुम्हारी परेशानी का कारण नानी माँ तो नहीं है? देखो, अगर ऐसा हुआ तो मैं नानी माँ की जान लेने से पहले एक मिनट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर किसी की भी वजह से किसी तरह की कोई परेशानी हो, ये बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आस्था अरमान सिंघानिया, तुम्हें परेशानियां तकलीफ देने का हक किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं। ये कहते हुए अरमान बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन बिना किसी एक्सप्रेशन के वो सारी बातें आस्था से बोल रहा था। वहीं आस्था ने अपनी घबराहट को, अपनी सोच को तुरंत कंट्रोल किया और अरमान की ओर छोटी सी हल्की सी मुस्कुराहट लाकर देखते हुए बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अरमान जी, और आप प्लीज हमारी नानी माँ के बारे में ऐसी बातें मत बोला कीजिए। हमारी नानी माँ ने हमें कुछ नहीं कहा है, वो तो हम बस कुछ सोचकर परेशान हो रहे थे। तभी अरमान उस लॉकेट की ओर इशारा करते हुए बोला, अच्छा तो क्या तुम इस लॉकेट को लेकर परेशान हो? इतना महंगा लॉकेट तुम्हें कैसे मिला? तभी आस्था बोली,
हाँ हम ये बात भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारे माता पिता ने हमें आखिरी निशानी के तौर पर हमें दिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये लॉकेट इतना ज्यादा महंगा है। और हम जानते हैं कि आपके मन में भी इसी बात को लेकर काफी सारे सवाल चल रहे होंगे, लेकिन आप प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये लॉकेट इतना ज्यादा महंगा है। आस्था ने जैसे क्लैरिफिकेशन दिया और अरमान ने तुरंत उसके माथे को चूम कर कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पता लगवा लिया है, ये लॉकेट जिन परिवारों को मिले थे उन्हीं में से एक परिवार के लिए तुम्हारे माता पिता काम किया करते थे, और तुम्हारे पिता की ईमानदारी से खुश होकर उन्होंने इतना महंगा लॉकेट उन्हें गिफ्ट दिया था, तो इसीलिए तुम्हारे माता पिता ने ये गिफ्ट तुम्हें दे दिया। अब जैसे ही अरमान ने ये बताया, आस्था तो हैरान हो गई और बोली, किन परिवार के लिए काम किया करते थे, बताइए ना अरमान जी, आप हमें पूरी बात क्यों नहीं बता रहे हैं, हम उस परिवार से मिलना चाहते हैं। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, अरमान ने आस्था को घूरते हुए कहा, क्या आपके लिए इतना जानना जरूरी है? मैंने बता दिया ना कि आपके पिता को ये लॉकेट उनकी ईमानदारी के इनाम के लिए मिला था, क्योंकि आपके पिता ने उस परिवार के कुछ लोगों की जान बचाई थी, उसी से खुश होकर उन्होंने इतना कीमती लॉकेट आपके पिता को दिया था, और आपके पिता ने अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज यानी कि आपको ये लॉकेट दिया था, तो मुझे लगता है कि आपको इस तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरमान ने बहुत ही कम समय में जल्दी ही आस्था की जन्म कुंडली और आस्था के माँ बाप की जन्म कुंडली निकलवा ली थी, और साथ ही साथ इस बात के बारे में पता लगवा लिया कि इतना महंगा लॉकेट आस्था के पास कहाँ से आया। और कहीं ना कहीं अरमान भी अब सुकून से था कि ये लॉकेट इनाम में उसके पिता को मिला था, इसीलिए आस्था को वो लॉकेट उसके माता पिता ने दिया था, तो कहीं ना कहीं अरमान के मन में जो आस्था को लेकर शक पैदा हो रहा था वो खत्म हो गया था। लेकिन अब आस्था कन्फ्यूज हो गई थी कि किस परिवार के लिए उसके माता पिता काम किया करते थे, आखिरकार पूरी बात पता क्यों नहीं चल रही है और नानी माँ उसे पूरी बात क्यों नहीं बता रही हैं। अब क्योंकि आस्था अरमान से ये भी नहीं कह सकती थी कि वो नानी माँ से मिलना चाहती है, बात करना चाहती है, क्योंकि अरमान तो वैसे ही नानी माँ से गुस्सा होकर बैठा है, और आस्था अरमान को इस तरह का कोई मौका नहीं देना चाहती थी जिससे कि अरमान एक बार फिर उसकी नानी माँ पर उंगली उठाए। इसीलिए अब आस्था आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी थी और अरमान बड़े ही प्यार से उसके सर को सहलाने लगा था। वहीं दूसरी ओर प्रियंका के माता पिता मनोज और सीमा दोनों प्रियंका को घर तो ले गए थे, लेकिन प्रियंका ने पूरी तरह से अपने घर को कबाड़खाना बना दिया था, सारे सामानों को तोड़ फोड़ दिया था और गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे हिस्से की खुशियां उस गवार को कैसे मिल सकती हैं? हाँ बोलो, जवाब दो मुझे। अब मनोज जी को भी गुस्सा आ गया था और उन्होंने आगे बढ़कर एक दो चांटे अपनी बेटी प्रियंका के मुंह पर दे मारे थे और आगे बबूला होकर बोले, अब तुम इस तरह की बातें कर रही हो? हाँ वो सब कुछ तुम्हारा हो सकता था, जिस जगह को लेकर आज तुम चीर रही हो वो जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी थी, लेकिन तुमने अपने पागलपन के चलते अपने उस दो कौड़ी के बॉयफ्रेंड के लिए तुमने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया, और अब हिसाब से तुम हर जगह रहना चाहती हो। हाँ वो जगह अब सिर्फ और सिर्फ आस्था की है, आस्था अरमान सिंघानिया की है, और तुम दोनों माँ बेटी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, बहुत चालाकी और तुमने अपनी मनमानी कर लिया, अगर तुम दोनों ने अब इस तरह की कोई घटिया हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर निकालकर फेंक दूंगा, समझे तुम दोनों? ऐसा बोलकर मनोज जल्दी अपने कमरे में चले गए थे। वहीं सीमा गुस्से से भुनभुन करते हुए अपने पति को देख रही थी और सोच रही थी कि उसके पति ने आज किस तरह से उससे बात की है, लेकिन आज तो उसके पति के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं, लेकिन फिलहाल वो किसी से कुछ नहीं कह सकती थी और वो भी अपनी बेटी को डांटने धमकाने लगी थी कि उसे इस तरह से सबके सामने खुल्लम खुल्ला नहीं आना चाहिए था,
और तो उस औरत के साथ क्या कर रही थी? मैं कुछ पूछ रही हूँ, आखिर तूने ये सब कुछ किया तो किया कैसे? तभी प्रियंका फ्लैशबैक में खो गई थी। प्रियंका जिस तरह से वसुंधरा के दिए हुए सेट को, जो उसने आस्था को दिया था, उसको लालची नजरों से देख रही थी। तब वसुंधरा ने प्रियंका को देख लिया था और जैसे ही उसने प्रियंका को अकेले में मिलने के लिए बुलाया तो उसने बोला कि वो यहाँ क्या कर रही है। तब प्रियंका ने सारी बातें उसे बता दी थी कि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अरमान के लिए आई है। लेकिन तब वसुंधरा ने प्रियंका को अपने प्लान में शामिल कर लिया था कि अगर वो उसका साथ देती है तो वो आसानी से अरमान की शादी उससे करवा सकती है। तब प्रियंका के लिए तो दोनों हाथों में लड्डू हो गए थे, क्योंकि अगर आस्था की सास ही उसकी शादी उसके बेटे से करवाना चाहती है तो उसके लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती थी। और प्रियंका ने बिना सोचे समझे और ये दिमाग में लाकर कि एक बेटा कब तक अपनी माँ से नाराज रहेगा, और जब उसकी शादी एक बार अरमान से हो जाएगी तब वसुंधरा रो धोकर प्रियंका को अपनाने के लिए कहेगी तो अरमान उसे अपना लेगा। तो कहीं ना कहीं प्रियंका का प्लान तो उसके हिसाब से पूरी तरह से बुलेट प्रूफ था, पूरी तरह से तैयार था। लेकिन